الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم. وضوء کی جو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اگر اس میں اس بسم اللہ کو ہم ایسے پڑھ لیں بسم اللہ والحمد للہ تو جب تک ہمارا وضوء باقی رہے گا اس وقت تک ایک فرشتہ نیکیاں مسلسل لکھتا رہے گا. اور بھی الفاظ آئے ہیں لیکن میں نے سب سے آسان والا استعمال کیا. کتنا آسان؟ بسم اللہ والحمد للہ. مشکل ہے؟ آسان. اور وضو سے پہلے پڑھنا یہ سنت ہے. پہلے پڑھ لیا بسم اللہ والحمد للہ, بہت آسان ہے نا جی. کوئی عام آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کاروباری آدمی, میں تو بیوپاری ہوں. اتنا مشکل, یہ ملاؤں کی باتیں یاد کرنا ہمیں بہت مشکل ہے. یہ تو کتنا آسان ہے, بسم اللہ والحمد للہ. بس اس کو پڑھ کر جو وضو شروع کیا, اس وضو سے وہ وضو جب تک باقی رہے گا ایک فرشتہ مسلسل نیکیاں لکھتا رہے گا. ایک بات ہو گئی. اور دوسری بات یہ کہ ریکارڈ کر رہے ہیں نا, رخ بدل دیں تاکہ شبہ نہ ہو. دوسری بات یہ کہ وضو میں اسراف سے بچنے کے لیے ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو میں اسراف سے بچیں. اور اس کی وضاحت آپ نے خود فرمائی کہ وضو کا اسراف یہ ہے کہ پانی کو ضائع کرنا. اور پانی کو ضائع کرنے کے مفہوم اس طرح سے ہے کہ نلکا کھلا ہوا ہے اور ہم منہ دھو رہے ہیں اور منہ کو لگا رہے ہیں, یا ہاتھ دھو رہے ہیں, رگڑ رہے ہیں, پانی بہ جا رہا ہے, مسح کر رہے ہیں اور دوران مسح وہ پانی مستقل گر رہا ہے, نلکا کھلا ہوا ہے. یہ اسراف کہلاتا ہے. اب اس یہ وضو جو کہ عبادت ہے, یہ وضو عبادت ہے, اس وضو کی عبادت کے ساتھ ساتھ گناہ بھی لکھا جا رہا ہے. اس سے بچنے کا آسان طریقہ, پہلے زمانے میں لوٹے ہوا کرتے تھے, اب سب اسمبلیوں میں رہ گئے, مسجدوں سے ختم ہو گئے. لیکن اگر نلکے بھی لگے ہوئے ہیں تو یہ اسراف سے, اس اسراف سے اور گناہ سے بچنا ہمارے اختیار میں ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے نلکا کھولا, پانی لیا, نلکا بند کیا, ہاتھ دھو لیا, کلی کر لی, منہ دھو لیا. جیسے لوٹے میں کرتے نا, لوٹے سے یوں کر کے پانی نکالا ایک ہاتھ میں لے کے اور کام ہو گیا. اسی طرح سے نلکے کو بھی یہی استعمال کر سکتے ہیں کہ نلکے میں پانی لیا, نلکے سے پانی لیا, نلکا فوراً بند کیا اور ہاتھ اور اپنا وضو کو مکمل کر لیا. ٹھیک ہے نا جناب؟ ممکن ہے. ہاں تھوڑی سی ذرا توجہ اور پریکٹس چاہیے ہوگی. کچھ دن بعد انشاءاللہ مشق ہو جائے گی, پریکٹس ہو جائے گی تو اتنے بڑے گناہ سے ہم لوگ بچ جائیں گے. دو باتیں ہو گئی. اب اس دعا کے متعلق جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی یہ دعا پڑھی, مشہور دعا ہے. ہمارے آئمہ حضرات اکثر اپنی نمازوں کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اس میں یہ پڑھتے ہیں. इसलिए अक्सर मुसलमानों को ये दुआ याद होती है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अगर याद नहीं है तो याद कर लिया जाए। मेरे मुर्शिद, मेरे शेख आरिफ बिल्ला मुजद्दिद ज़माना हज़रत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिसाला लिखा है। हजरत का वो रिसाला है, उसके माने, उसका नाम है ईमान पर खात्मे के सात मुदल्लल नुस्खे। यानी वो बातें कि जिससे ईमान पर खात्मा मिलेगा, उसमें से एक इस दुआ का पढ़ना भी है। और फरमाया कि हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात अपने रिसाले महासिने इस्लाम के अंदर नकल की है कि जब बर्रे सगीर जब के तकसीम ना हुई थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, उस जमाने में हिंदुओं ने एक बहुत ही जबरदस्त तहरीक चलाई थी मुसलमानों को हिंदू बनाने की। तो हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जिस इलाके में तहरीक अपने उरूज पर थी और उस तहरीक से मुतासिर होकर कमजोर ईमान वाले मुसलमान अपने मजहब को तब्दील कर रहे थे, तो हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जिनको उम्मत की ये गम, उम्मत का ये गम और ये फिक्र थी, हजरत ने वहां का सफर फरमाया। फिर वहां हजरत का ये बयान हुआ महासिने इस्लाम, उसमें हजरत ने ईमान की अहमियत को बयान फरमाया और मुसलमानों को ईमान बचाने के तरीके बताए। ऐसे एक ये तहरीक का एक शख्स कारिंदे, वो एक खेती बाड़ी करने वाले किसान के पास पहुंचे, वो हल चला रहा था और उसको हिंदू मजहब इख्तियार करने की दावत दी। उसने हल उठा लिया और क्या कहा, हल साईं। अब ये मजा यही आ सकता, और इसके अलावा कभी मैंने बयान किया भी नहीं, क्योंकि ये तो सिद्ध में मजा आ सकता ना जी, तो सब कभी कहे हेलो साई हेलो बजो। तो उसने हल उठा लिया और कहा कि यहां से भाग जा, तू जानता नहीं मैं हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूं, तेरी इन बातों के चक्कर में मैं नहीं आ सकता। ये कौन था, ये कोई तहज्जुद गुजार, कोई इशराक अवाबीन पढ़ने वाला नहीं, ये कोई आलिम किसी तबलीगी जमात में जाने वाला, सुलह की जमात में रहने वाला नहीं, सब हजरत गंगोई का मुरीद था और खेती बाड़ी इसका काम था, लेकिन अल्लाह वालों की सोहबत की करामत हकीम उल उम्मत फरमाते हैं कि ये अल्लाह की सोहबत की बरकत है कि कल्ब इतना मजबूत कि सुका में तेरी एक बात नहीं सुनूंगा, हल भज, नहीं तो ये हल मार दूंगा मैं तुझे। ईमान बड़ी प्यारी चीज है और कायनात में अल्लाह ताला को इससे बढ़कर कोई प्यारी चीज नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने ईमान की हिफाजत का नुस्खा भी बताया कि ईमान को बचाना चाहते हो तो तक्वा इख्तियार करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह। कुर्बानी का गोश्त कहां रखते हैं, फ्रीजर में। फ्रीजर में जो चीज रखी जाती है वो महफूज हो जाती है, उसको यार लोग छह महीने बाद भी खाते हैं। एक साहब ने ख्वाब में देखा कि जन्नत में बहुत सारे उसके दोस्त और रिश्तेदारों के बकरे नजर आ रहे हैं और जन्नत में टहल रहे हैं। उसने देखा अपना बकरा तलाश के तो आखिर नजर आया, लेकिन वो तीन टांगों पे चल रहा था। तो उसने फरिश्ते से पूछा कि भाई ये सबके बकरे जो है चार टांगों पे चल रहे हैं, मेरे बकरे की चौथी टांग किधर है? तो फरिश्ते ने जवाब दिया, जबकि कुर्बानी को 6 महीने गुजर चुके थे, तो फरिश्ते ने जवाब दिया कि चौथी टांग तो आपके डीप फ्रीजर में रखी हुई है, आप वहां से निकालेंगे तो इसको आगे लगेगी ना। तो जिस तरह से गोश्त को और चीजों की हिफाजत के लिए फ्रीजर है, रेफ्रिजरेटर है, इसी तरह से ईमान की हिफाजत के लिए तकवा के रेफ्रिजरेटर में रखे। लेकिन रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए बिजली चाहिए, इस तकवा के फ्रीजर को रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए तजल्ली चाहिए, और वो तजल्ली मिलती है कूनू मास सादिकीन। इसी आयत में अल्लाह ताला ने तीनों चीजों का जिक्र कर दिया, ईमान, तकवा, सोबत अहलुल्लाह। ये तकवा कहां से मिलेगा? ये अल्लाह वालों की सोबत से मिलेगा। एक ही आयत में तीनों चीजों का, ईमान ये बचाने को फरमाया, बहुत जरूरी है, गुनाह से ईमान को नुकसान होता है, और तकवा से ईमान महफूज होता है। तकवा का मसाला, क्योंकि तकवा है बड़ी कड़वी चीज, लेकिन उसका नतीजा बड़ा मजेदार है। जैसे लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च कितनी खतरनाक है, लेकिन जब वही, उसी तरह मसाले में जो चीजें इस्तेमाल होती है सब इंफरादी तौर पर इस्तेमाल करना मुश्किल है, लेकिन जब उसी को पीसा जाता है और पीस के उसको मछली पर मसाला लगाते हैं, फिर हम उसको फ्राई करते हैं, तो कहते हैं वाह सही वाह, मजो अच्छी भी हो, दरियाए सिंध की मछली की तो क्या बात है। तो वही मसाला, ये तकवा यूं तो मुश्किल है, लेकिन जब इसको अल्लाह वालों की सोबत से, जब इस गुनाह के तकाजों को पीसा जाता है, तो नतीजा ये होता है, जब वो तकवा का मसाला जब लगता है तो नमाज को भी लजीज मजेदार बना देता है, तिलावत कुरान पाक को, तहज्जुद को, तबलीग को, इल्म पढ़ने पढ़ाने को, जिंदगी गुजारने को, यहां तक के खाना खाने में भी मजा आता है। एक एक चीज मजेदार हो जाती है। तो ईमान की हिफाजत के लिए एक के खात्मा ईमान पर ये दुआ दी है, रब्बना। मेरे मुर्शिद फरमाते, देखो यहां फरमाया रब्बना, और कुरान पाक की दुआएं अक्सर रब्बना से शुरू होती है, रब के माने तरबियत फरमाने वाला। तरबियत की हकीकत यह है कि एक मुरब्बी होगा, एक मुरब्बा होगा, यानी एक तरबियत करेगा, एक तरबियत करवाएगा। कोई आदमी अपनी तरबियत खुद नहीं कर सकता, उसको मुरब्बी चाहिए, तरबियत करने वाला चाहिए। और वो तरबियत करने वाला, तरबियत है क्या चीज? असल में एक टारगेट और मकसूद होता है, एक मकसद होता है कि ये मेयार हासिल करना है। मिसाल है कि डॉक्टर बनना है, एक बच्चा पैदा हुआ, बाप कहता है मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, बच्चा पैदा हुआ, वो ले गया सीधा बच्चे को मेडिकल कॉलेज में कि लीजिए जनाब इसको डॉक्टरी पढ़ा दीजिए, कोई नहीं कबूल करेगा, कहेगा अभी तो इसको खेलने के दिन है, खिलाओ, फिर इसको स्कूल में दाखिल करो, पहले होती थी कच्ची पहली पक्की पहली, अब होती है पैंपर पहली। वो प्री पहली है, पैंपर क्लास, प्राइमरी पढ़ेगा, सेकेंडरी पढ़ेगा, मैट्रिक करेगा, इंटरमीडिएट पढ़ेगा, उसके बाद दाखला होगा। इसी को कहते हैं तरबियत, कि आहिस्ता आहिस्ता, दर्जा ब दर्जा, तदरीजन उस मकाम पर पहुंचा देना, ये तरबियत है। तो अल्लाह ताला ने रब्बुल, मेरे शेख फरमाते थे कि अल्लाह ताला रब्बुल अबदान भी है और रब्बुल अरवाह भी है। बदन की तरबियत भी वही फरमाते हैं, उसके लिए रिस्क रखा ये खाने पीने की चीजें, और रब्बुल अरवाह भी है उसके लिए इबादत रखी। ये जैसे हम नमाज पढ़ते हैं रोजाना, ये हमारे रूह की तरबियत के लिए है, ये जिक्र, ये तिलावत, ये आमाल, ये सब के सब हमारी तरबियत के लिए, तरबियत रूहानी के लिए। और तरबियत रूहानी का जो मकसूद है वो है अल्लाह ताला की दोस्ती और ताल्लुक माल्ला हासिल करना, इसके लिए सब तरबियत है। इसलिए तरबियत में जिस तरह से रूहानी जिस्मानी तरबियत में गिजा का तकरार होता है कि बच्चे को रोजाना दूध पिलाया जाता है, रोजाना सेरिलैक खिलाते हैं दलिया, रोजाना उसको आलू पीस कर केला ग्राइंड करके खिलाते हैं, फिर रोजाना हम लोग खाना खाते हैं, रोजाना हम लोग सालन खाते हैं, रोजाना हम लोग चाय पीते हैं, तो तकरार गिजा है कि नहीं, और रोजाना गुटखा भी खाते हैं। वो जुम्मे के रोज एक जगह जाना हुआ मेरा, जुम्मे के बाद एक दफ्तर में एक काम था, मैं बड़ा हैरान हुआ, उसने मुझसे एक अजीब सवाल पूछा। जो सिक्योरिटी वाला आदमी था, मोबाइल वगैरह आजकल वो मशीन से गुजारते ना, जो लोहा वो टू करके बोलता है वो गुजारा, तो फिर वो मुझसे सिक्योरिटी वाला सवाल करने लगा, कहते आपके पास जेएम तो नहीं है। मुझे बड़ी हैरानगी हंसी भी आई कि बंदा तो देखता कि हम जैम जैम खाने वाले नहीं, हम जाम पीने वाले हैं। ये जैम खा के मस्त होते हैं, हम अल्लाह की मोहब्बत के जाम पी के मस्त होते हैं। तो उसने मुझसे सवाल पूछा, मैं बड़ा हैरान हुआ। तो रोजाना ये चीज है, गिजा का तकरार है, उससे इंसान घबराता नहीं है, कहते वो तो जरूरी है। तो याद रखिएगा, ये जो खानका है असल में ये तरबियत गाह है, और जहां तरबियत होती है वहां पर मजामीन का भी तकरार होगा, वहां बातों का भी तकरार होगा, वहां बहुत सारे आमाल का भी तकरार होगा। ये देखिए माशाल्लाह यहां जमात आई हुई है, अब वही एक बात, छह नंबर अल्लाह की वहदानियत, इकराम मुस्लिम वगैरह, बातों का तकरार है ना, ये तरबियत के लिए। तो याद रखिएगा, ये खानका तरबियत गाह है, यहां पर बातों का तकरार भी होगा, यानी जी मुफ्ती साहब वही एक बात, वही एक बात, वही आखिर में तान टूट के वही पहुंची। जैसे एक वाइस था मेरे शेख ने सुनाया, वो सिर्फ शहादत हुसैन पर तकरीर करता था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो किसी ने उसको कहा कि भाई तुम्हें कोई और मजमून नहीं है? कहा बोलो क्या करना है, जो मजमून बोलो। कहा आज सूरह इखलास की तफसीर बयान कीजिए आप। बहुत अच्छा, अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ी, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल ए नबी, अल्लाह ताला फरमा रहे, नबी आप फरमा दीजिए। कौन नबी? जिनके नवासे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने, और गाड़ी अपनी वहीं ले गया। तो मेरे दोस्तों, यहां पर मजामीन का तकरार भी होगा, क्योंकि ये तरबियत के लिए है, जैसे जिस्मानी गिजा वैसे ये जो मजामीन है ये रूहानी गिजा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया रब्बना, के ए हमारे रब्बा, और ये सरकारी मजमून है, और जब दरखास्त सरकारी मजमून पर दी जाती है, सरकारी प्रोफॉर्मा जो कहलाता है, सरकारी तरीका कार, तो सरकार उसी दरखास्त को मंजूर फरमाती है। मसलन कोई आदमी कहे कि जी ये फला किसी दफ्तर का, बल्दिया का, क्योंकि इसका फॉर्म जो है वो तो इतना पतला कागज है और ऐसा खूबसूरत भी नहीं है, वो अपने कंप्यूटर पे कलर प्रिंटर भी मौजूद है, बहुत खूबसूरत उसने डिजाइनिंग की, शानदार कई कलर का, एक पूरा एप्लीकेशन तैयार की जिसमें पूरी तफसील लिख दी। उसने तो बाप का नाम पूछा था, उसने अपने बाप क्या बाप के बाप का नाम भी लिख दिया और बाप के दादा का नाम भी लिख दिया, पूरी तफसील लिख डाली। अब वो दरखास्त दफ्तर में लेकर गया, कबूल करेंगे दफ्तर वाले? कहेंगे नहीं जनाब। कहा क्यों? कहा इस कागज पर आप अपनी दरखास्त लेकर आइए, जो हमारे दफ्तर का प्रोफॉर्मा है, ये खास ये जो दरखास्त नामा है इसके मुताबिक लाइए, इस पर लिख के लाइए। कहा ये देखिए जो मेरा कागज है, आपका कागज देखें कितना पतला, इसकी ग्रामेज देखें और मेरे कागज को देखें, बेहतरीन इंपोर्टेड कागज है, खूबसूरत कितना है, लेकिन ये इंपोर्टेड कागज और उसकी खूबसूरती काम ना आएगी। लेकिन इसी पर लेकर लाइए तो उसको सरकारी मजमून, सरकार ने जारी किया तो वो सरकार की तरफ से गोया कि उसके कबूलियत की तरफ कदम है। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमें सिखाया, ये जो दुआएं सिखाई हैं, ये दुआएं इसलिए सिखाई हम ऐसे मांगे क्योंकि हमें मांगने का ढंग ना आता, हम कैसे मांगते। लेकिन वो अल्लाह ताला जो शीर खार बच्चे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं समझते, समझ नहीं सकते, वो अल्लाह ताला जिस तरह उन छोटे बच्चों को दूध पीना सिखाते, किसी इंस्टीट्यूट में जाकर वो ट्रेनिंग हासिल नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला उन छोटे से बच्चों को, मासूम बच्चों को दूध पीना सिखाता है, उसी अल्लाह ताला ने हमें भी अपनी रूहानी दूध पीना सिखाया। ऐसे मांगो, कहो रब्बना। हजरत फरमाते देखो यानी तर्जमा क्या है, हमारे रब्बा। हजरत फरमाते थे देखो एक है अब्बा, एक है अब्बा और एक है हमारे अब्बा, मेरे अब्बा। हमारे बाप से पूछो जब औलाद कहती है मेरे अब्बा, एक बोले अब्बा तो कहती क्या मेरे अब्बा, तो कितना मजा होता है। दादा देखिए बाप छोटे बच्चों को क्या बोलता है, कहता है बोलो मेरे अब्बा, बोलता नहीं बोलता, क्यों? इसमें चाशनी ज्यादा है। दादा अल्लाह ताला ने सिखाया कि तुम कहो, तुम ना समझो, तुम कहो ऐ हमारे रब्बा, ताकि हमारी रहमत को जोश आए। रब्बना हमारे रब्बा, ला तुझे कुलू बना, हमारे दिलों को टेढ़ा ना होने दीजिए। हजरत ने फरमाया कि यहां ला दाखिल करना, टेढ़ा ना होने दीजिए, ये इस बात पर दलालत कर रखता है और दलालत करता है कि हमारे दिलों में टेढ़ा होने की सलाहियत है, दिल टेढ़ा हो सकता है हमारा। पता चला, देखिए ना कितनी दफा होता है, रमजान शरीफ में दाढ़ी का इरादा किया, एहतिकाफ में बैठे दाढ़ी का इरादा किया, अभी मस्जिद से बाहर निकले शैतान पहुंच गया, गले में हाथ डाला, अरे यार क्या तूने शक्ल बनाई, कल तो देख सारी रिश्तेदार नहीं आएंगी, पार्टियों में जाना है, सब होगी, क्या कहेंगी, कितना तू पहले कैसा मॉडर्न था और कितने तुम स्मार्ट लगते थे, हैंडसम लगते थे, ये क्या तुमने अपनी शक्ल बना ली है। अब हाजी हज को जाता है, जब वतन लौटने का इरादा करता है तो उसी वक्त सारे उस नूर को वहीं रख के आता है कि यहां ना लेके जाऊं। अब वो हाजी जिसके चेहरे पर हज के अय्याम में कुछ दिनों में दाढ़ी आती है, अब वो उस नूर को भी वहीं पर, वो जो रोशन हुआ था चराग वहीं बुझा के आ गया, क्योंकि ये अपने साथ क्या हज लेकर आया। तो इसलिए अब हमारे दिलों में ये टेढ़ा होने की सलाहियत है कि अचानक हम पटरी से उतर जाते हैं, कभी नमाज पढ़ते कभी नहीं पढ़ते। इसका भी मसला सुन लीजिए, अगर नमाज में दिल न लगे, हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो आदमी जिस आदमी का नमाज में दिल न लगे फिर भी वो नमाज पढ़ता है कि मेरे मालिक का हुक्म है, अगरचे उसका दिल नहीं चाहता, फरमाते इसको डबल अजर मिलेगा। एक तो अल्लाह ताला की बंदगी का अजर कि अल्लाह ताला की बात मान रहा है, और दूसरा अपने दिल के खिलाफ करने का अजर। यही तो मजा है जनाब, है शौको जब्ते शौक में कशमकश। खाजा साहब की बात सुनाया करते थे हजरत, है शौको जब्ते शौक में कशमकश, क्या मतलब, शौक कह रहा है हसीनों को देख लो, फिल्में देख लो, औरत गुजर रही है सर नीचे करके टेढ़ी निगाह से देख लो, तो अब ये क्या है? शौक। और सब पे शौक नहीं भाई, बुरी बात है। वो मेरी पड़ोसन है, वो मेरी माँ से ज्यादा मेरे लिए मोहतरम है, मेरी भी बेटी है। अगर वो बेपर्दा है तो वो जाने, मौला जाने, लेकिन हमें तो हुक्म है अगर गटर खुला हो तो क्या हम उसमें छलांग मारेंगे कि जी गटर तो खुला था हम क्या करें? वो अकल इस्तेमाल करते हैं, तो अकल इस्तेमाल करनी है। अगर वो पे पड़ता है, अल्लाह ताला जाने उसकी बंदी जाने, हमारे लिए हुक्म है नजर बचाने का। अब वो शौक पैदा हो रहा है कि देखे, लेकिन खौफ खुदा कह रहे ना देखो, तो अब ये कश्मकश हो रही है ना। सुभान अल्लाह, ख्वाजा साहब फरमाते हैं, है शौको जब्ते शौक में कश्मकश, दिल मुझको और मैं हूं दिल को सताए हुए। दिल मुझे तंग कर रहा है, चल और मैं दिल को तंग देख, और मैं दिल को कह रहा हूं नहीं देखूंगा। क्या मजा है। और न देख कर क्या कहे, न देखेंगे उन्हें हरगिज न देखेंगे कि जिनको देखने से रब मेरा नाराज होता है। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह का शेर है, कैसा मजा है। सुभान अल्लाह, इस कश्मकश में भी मजा है, लज्जत है। तो क्या फरमाए, लात उसे कुलू बना, हमारे दिलों को टेढ़ा ना हो दीजिए। यानी इसके अंदर एक सवाल है, अस्सबातु फिद्दीन, अस्सबातु अलद्दीन, के दीन पर कायम रहना, इस्तकामतु अलद्दीन, दीन पर जमे रहना की दरखास्त की जा रही है। और जमने के माने ये नहीं है कि कभी इंसान उधर जाएगा फिर वापस आ जाएगा, कभी कभी ऐसा है, दिल है वो तो कभी उधर भी जाएगा कभी उधर भी जाएगा, दिल का तो काम ही यही है। यहां तक कि इंसान बुढ़ा भी हो जाता है दिल जवान रहता है। जैसे मुहर्रम का जमाना, एक चौधरी साहब सफेद कपड़े पहन के घूम रहे थे, किसी ने कहा चौधरी साहब मुहर्रम में सफेद कपड़े काले क्यों नहीं पहने? क्या कपड़ों से क्या होता है, दिल काला होना चाहिए। कपड़ों से क्या है, दिल होना चाहिए, दिल काला होना चाहिए। तो बूढ़ा है उसका भी दिल चाहता, और ये कोई ऐसी बात नहीं, दिल तो काम ही है ये, लेकिन तकाजे पे अमल तो नहीं करेंगे ना। यही बंदगी है, और यही चीज अल्लाह वालों से सीखने की जरूरत है। खानकाह में इसी की मश्क कराई जाती है, इसी की ट्रेनिंग कराई जाती है कि अपनी तबीयत को न देखे, अल्लाह ताला की मर्जी को देखे। हाँ, अगर तबीयत ये चाहती है कि चलो मैं हाफिज की रबड़ी का ट्राइफल खा लूं, शरीर से पूछा भाई ट्राइफल खा सकते हैं? जी खाइए, कोई मना नहीं, लेकिन ट्राइफल में से टी ना हटाए, राइफल ना चलाए। क्योंकि उसके चलाने के मौके और है, वहां चलाए। क्योंकि अक्सर इंग्लिश के उसमें टी साइलेंट भी होता है, अक्सर इंग्लिश के जो अल्फाज हैं उसमें टी साइलेंट होता है। तो अब मौका है, जी हलीम खाने को जी चाह रहा है, तो हलीम का लफ्ज बताते हैं, जरा बर्दाश्त करें, मुहर्रम गुजर जाए खूब खाए, डुबकी लगा दे। लेकिन मेरे दोस्तों कितनी अजीब बात है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हमारी आंखों की ठंडक सरकताज, जिनकी मोहब्बत हमारा ईमान है, सोचने की बात है कि हालत सौम रोजे की हालत में, भूख प्यास किस हालत में आपने जाम शहादत नोश फरमाया, और हम उस शहादत के दिन को मनाने के लिए दूध वाले शरबत, वो भी पिस्ता बादाम डाल के वो डालते, क्या आपकी शहादत का यही हक है? ये तो मजाक नहीं है। ये तो ऐसे ही हुआ कि एक अब्बा, किसी का बाप मर गया, वो भूख से वो मर गया, बेटा उसकी कब्र पर बैठा या उसकी लाश पे बैठा, वहां पर बिरयानी और सब उड़ा रहा हूं, कहा अब्बा तुझे तो मिला नहीं, मैं खाऊंगा, तो तेरी याद में ऐसे मनाऊंगा। कोई अकलमंद आदमी इसको तस्लीम करेगा? तो मोहब्बत का तकाजा था कि जिंदगी का, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान शरीफ के बाद अफजल जो रोजा है वो मुहर्रम का रोजा है। 9-10 को रखे या 10-11 को रखे, और हलीमे खाना और जनाब जो है वो दूध वाले शरबत पीना, ये तो आपकी शहादत के साथ मजाक है। तो शरीयत से पूछा, कोई नहीं हलीम खाना मना देंगे, लेकिन चूंकि इसको इस जमाने में जरूरी करार दे दिया, हमारे हजरात ने उलमा इकराम मुफ्ती इकराम ने मुफ्तियान इकराम ने मना फरमाया कि हलीम खाओ, सारा साल खाओ, सब भी खाओ, सबको खिलाओ, और जो मुफ्ती फतवा देता है उसको भी खिलाओ। ये मैं आपको एक बात समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर वो मना कर देना फिर मुझे बताइएगा, वैसे वो मना नहीं करेगा। आप तजुर्बा करके देख ले, अब मुफ्ती साहब को खिला के देखें। लेकिन साथ में जरा मसाले वाला मसाला भी हो, लीमू भी हो, और वो प्याज को जो लाल करते हैं ना वो भी हो, ताकि मजा पूरा मिले। अगर मुफ्ती साहब मना कर दे मुझे बता दीजिए, मैं कराची से आ जाऊंगा, मैं खुद खाऊंगा। तो जिस चीज को शरीयत ने मना नहीं किया आप उसको खाइए, लेकिन जहां मना फरमा दिया, और मेरे शेख फरमाते बाकी दाढ़ी न रखने का शौक, थोड़ा टाइम बदल ले। जैसे बच्चों को कहते हैं ना, बच्चों को कहते हैं बेटा अभी आप छोटे हैं, अब्बा मोटरसाइकिल चलाने का, नहीं बेटा अभी थोड़ा टाइम आ जाए फिर तुम्हें मोटरसाइकिल चलाना, गाड़ी भी चलाना, एक वक्त कहते ना, तो थोड़े दिन की बात है, जिंदगी बहुत थोड़े दिन की है, जन्नत में जाएंगे दाढ़ी नहीं होगी, यहां रख ले दाढ़ी, और अगर थोड़ी सी है उसको पूरी कर ले, थोड़ी सी उसको बालिग कर ले, इंशाल्लाह शादी भी होगी, और बल्कि जल्दी होगी, दाढ़ी वालों की शादी जल्दी होती है बगैर दाढ़ी वालों से पहले होती है। तो क्या सिखा है, ला तुझे कुलू बना बाद इन हदई तना, जबकि आपने हमें हिदायत अता फरमाई, नेक रस्ते पे रखा, देखिए अल्लाह का शुक्र है मस्जिद में जमा फरमा दिया। कुछ लोग गए हुए रायवंड गए हुए, कोई खानकाह मदारिस, कितनी नेक काम की तौफीक, तो अल्लाह इस चीज को कायम रखिए, ये अल्लाह से दरखास्त करता रहे। वहब लना मिन लदुनका रहमा, और हमें हिदायत फरमाइए। यहां अजीब मजा है, अल्लाह ताला ने फरमाया सिखाया ऐसे कहो, हब लना मिन लदुनका, कि हमें हिदायत फरमाइए अपने पास से। देखिए दस्तरखान लगा हुआ है, कोई आलिम को अल्लाह वाला, कोई शेख बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, सालन के डोंगे से, सालन के बर्तन से सालन लेने का मजा तो है, लेकिन अगर अल्लाह वाला अता फरमा दे क्या आपके पास से, अल्लाह भैया मिल लगन का रहमा, रहमत दीजिए, हम लना हमें हिबा फरमाइए अपने पास से। ये मिल लदुनका का क्या मजा है, अपने पास से। देखे ना, किसी जब मदारिस में क्या करते हैं कि जब खत्म कुरान पाक होता है, कुरान पाक की तकमील या कोई और मौका आता है, तो बच्चों को किसी बुजुर्ग से, किसी लावाले से, आलिम रब्बानी के हाथ से कोई सनद दिलवा देते हैं, या कोई इनाम रखा वो इनाम देते हैं, तो क्या है कि उससे उसको खुशी होती है कि उनके हाथ से, उनके पास से, सुभान अल्लाह। तो ये क्या, अल्लाह हमें हिबा फरमाइए अपने पास से, अपने पास से दीजिए। और हिबा, हिबा इसलिए सिखा दिया, बात है कि वो रहमत है ही इतनी कीमती चीज, हम उसको कीमत से ले भी नहीं सकते। तो इसे हिबा वो क्या, मुफ्त में, कोई सर्विस चार्जेस भी नहीं, क्योंकि आजकल मुफ्त की चीज भी सर्विस से मिलती है ना, सर्विस चार्जेस उसमें मुफ्त की चीज पे भी लगते हैं। जैसे आप वीजा, सऊदीया की हुकूमत वीजा देती है मज्जानन, लेकिन उस पर यार लोग देते हैं 20-25 हजार रुपए, हालांकि उनका वीजा लिखा होता है मज्जानन, मुफ्त है। बस उस ऊंट के साथ वो जो रस्सी होती है ना, वो बहुत महंगी होती है। एक साहब ने किसी बात पर कसम खाई कि मैं इस ऊंट को जो है वो बस मैं मुफ्त दूंगा वरना मेरी बीवी पर तलाक। अब कसम खा ली, अब समझ में नहीं आया, एक आलिम के पास गए, अब अंदाजा हो गया भाई ऊंट उस जमाने की मर्सिडीज हुआ करती थी और घोड़ा रोल्स रॉयस होता था। चलो मर्सिडीज ना सही तो टूटी कोरोला तो होती थी ऊंट, और वो भी बगैर सीएनजी के क्योंकि उसकी टंकी ऐसी कि डालो एक दफा पानी वो हफ्तों हफ्तों जनाब सहरा का, इसलिए तो जानवर वो। अब उस वो गया तो उसको तरकीब सिखाई तो उसने बाजार ले गया, ऊंट पसंद आएगा, ऊंट कितने का, ये ऊंट जो है मुफ्त है। अच्छा मुफ्त ऊंट, सुभान अल्लाह, आवाज लगा रहे मुफ्त ऊंट ले लो। एक आदमी अच्छा आप लाइए दीजिए, कहा नहीं बस ये रस्सी लेनी पड़ेगी साथ में आपको। रस्सी कितने की है? एक लाख रुपए की है। अल्लामा जाज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक साहब आए, अब ऊंट खूबसूरत भी था, आगे पीछे से देख रहे, कह रहे हसद से, ए ऊंट तू कितना अच्छा है लेकिन ये तेरा रकीब रस्सी है ना, ये बहुत बुरी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या फरमाया, हिबा, हिबा दीजिए, सुभान अल्लाह, यानी हिबा की कीमत नहीं होती। अपने पास से क्या चीज, वो रहमत। अब चूंकि यहां लात उसे कुलूबना के बाद रहमत का जिक्र किया तो इससे पता चला इस रहमत से मुराद वही है कि वो रहमत कि जिससे हमारा दिल टेढ़ा ना हो और हम दीन पर कायम रहे। इन्नका अंतल वहाब, के आप बहुत वाहिद नहीं है, वहाब है, फाल का सीगा है, बहुत हिबा फरमाने वाले हैं। इन्नका अंतल वहाब, हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे मारिज तालीम के लिए कि आखिर आप सबको क्यों देंगे और या हम आपसे क्यों मांगे, क्या आप हैं देने वाले, आप तो हैं देने वाले, सुभान अल्लाह। तो ये दुआ कितनी प्यारी दुआ, इसका और इसका नतीजा क्या, मजमून कितना अजीमुशान, सरकारी मजमून है, कितना अजीमुशान और कितना एक इनाम तो कितना इसका जबरदस्त कि इसकी बरकत से खात्मा ईमान पर मिलेगा। लिहाजा इस दुआ को पढ़ा जाए हर नमाज के बाद, जितनी कैसे हो सके इस दुआ को अल्लाह ताला से मांगे कि हम लोग बहुत मोहताज हैं, हमारा दिल तो इधर उधर भागता फिरता है, कभी इस पे कभी उस पे कभी उस पे, लेकिन कभी जब फरमाबरदारी से हटना चाहता है हट भी जाता है, तौबा इस्तिगफार करके बुलाते हैं तो अल्लाह से मांगे कि अल्लाह आप अपनी रहमत की रस्सी से हमें बांध दीजिए। कि जिस तरह मालिक क्या करता है कि जानवर की रस्सी जरा बड़ी कर देता है लेकिन पांव में रस्सी बांध के रखता है ताकि वो मालिक की हुदूद से जाने ना पाए, तो अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत की ऐसी रस्सी बांध दीजिए कि हम आपकी हुदूद रहमत से बाहर ना निकले। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल फरमाए, इस दुआ को पढ़ने का मामूल बनाया जाए। अच्छा दुआ से पहले अर्ज कर दूं कि चार किताबें आप हजरात की खिदमत में, यह है 114 नंबर नहीं, खैर तो ये चार किताबें हैं हमारे पीर मुर्शिद हमारे शेख हजरत वाला हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह के वाज़ हैं। ये नए वाज़ जो हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ खानका में हजरत मोहम्मद साहब दाम बरकातुम ने, तो उस सिलसिले में ये चार वाज़, ये तो कई महीनों हो गए छपे हुए इसको और मजीद चार वाज़ छपने के लिए गए हैं, तैयार है बिल्कुल, उसका सब तैयार है, प्रिंटिंग प्रेस में है। तो ये तोहफा आप हजरात के लिए, आपकी खिदमत में हजरत वाला की हयात मुबारक के ये वाज हैं, एक का नाम है साया इसका हुसूल, एक है सुकून कल्ब की बेमिसाल नियामत, और ये है 114 वाला खत्म हो गया, एक वाज वो खत्म हो गया था, और ये है दारे फानी में आखरत की तैयारी, हिफ्ज़ दुनिया में आखरत की तैयारी करें कैसे और नस्बत माल्ला की अजीम शान दौलत, सुभान अल्लाह। तो ये चार वाज हैं, तो आप हजरात दुआ से फारिग होकर इनको भी वसूल कर लीजिएगा, ये भी हिबा है, ये भी हिबा है मिल्लतुन्नी।
माशाल्लाह
माशाल्लाह, ये हिबा है आप हजरात के लिए, अहले हैदराबाद के लिए एक तोहफा है। और ये मुफ्ती साहब की मोहब्बत है कि बंदा के यहाँ पर हाजिरी, पहले भी मैं आप हजरात की खिदमत में हाजिर हूँ, सफर था लाहौर का, तो मुफ्ती साहब का मोहब्बत भरा शिकवा रहता था कि बहुत दिन से तुम्हारा यहाँ पर हाजिरी नहीं हुई। तो बस मैंने कहा कि भाई चलो मुख्तसर, बे वक्त का भी है क्योंकि अक्सर जो है वो शाम के प्रोग्राम होते हैं, उस हिसाब में कहा लेकिन भाई कि कोई नहीं, जहर के बाद बयान होगा और मुख्तसर ही चाहे ऐसा ऐसा ही। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की कोई भी नहीं है कि लोग कम हो या ज्यादा, इसकी कोई नहीं है। बात यह कि एक भी एक आदमी भी अगर मजमे से दाढ़ी रख ले और एक आदमी भी इस दुआ को पढ़ा, हमारा काम बन जाए तो क्या चाहिए, बस बस सफर कबूल है। अल्लाह ताला अपने क्रम से इसको कबूल फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व सहाबी व बारिक व सल्लम। रब्बना ला तुज़िग क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو عافیت نصیب فرما، مغفرت بے حساب فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ایمان کو حفاظت کی حفاظت والے اعمال کی توفیق عطا فرما، تقوی کی دولت عطا فرما، اور یا اللہ گناہوں سے حفاظت نصیب فرما، ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرمانبرداری کی عادت سے تبدیل فرما، اور یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے، شریعت و سنت پر چلنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور ہم سب کو، ہماری اولادوں کو نیک صالح اور فرما بردار بنا دیجئے، تقوی کی دولت عطا فرما، دونوں جہان کی عافیت عطا فرما، راحت رحمت اور نعمتوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ اور یا اللہ اپنے کرم سے صدقے میں دین کی، یا اللہ دین کی علم بھی عطا فرما، دین کی دولت نصیب فرما، ہماری جائز حاجات کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجئے۔ اور یا اللہ اپنے کرم سے صدقے میں ہمارے اس بیٹے کو اپنی محبت کا دریا بنا دیجئے، اپنی خاص رحمت کا، جو اس دعا میں آپ نے جو خزانہ رکھا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس خزانے کو، اس دعا کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی برکت سے یا اللہ اس خزانے تک ہماری رسائی فرما دیجئے، رحمت کا خزانہ ہم پر عام فرما، تام فرما اور تمام فرما دیجئے۔ اللہ اے اللہ اپنے کرم کے صدقے میں سلامتی ایمان، سلامتی آدا کے ساتھ دنیا سے رکھیے، اور سلامتی ایمان، سلامتی آدا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔